श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 26वां श्लोक जो है इसके ऊपर संक्षिप्त रूप से हम चर्चा करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश सार रूप में दे रहे हैं। और यहां संक्षिप्त रूप में ये ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान इसको बता रहे हैं। और इस श्लोक में खास करके कोई भी जो करता है, हर एक व्यक्ति करता अपना अपने काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, अलग अलग गुणों में, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में उसकी भावना किस प्रकार से होती है। और यहां इस श्लोक में 26वें श्लोक में भगवान वो कर्ता जो सत्वगुण में है उसका लक्षण क्या है यहां बता रहे। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्यो हो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। यानी इसका अनुवाद है, मेरे पास हिंदी भगवद गीता नहीं है, मराठी है, तो मैं मराठी में पढ़ूंगा, आप समझ जाइए, उसके बाद हिंदी में प्रवचन करेंगे। जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग ना करता, मिथ्या अहंकार अहंकारा विना निश्चयाने आणि उत्साहाने वशाप मुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्म असे म्हटले जाते। मतलब ये है, मुक्त संग जो तीन गुणों से संग ना होकर, मतलब फल से संग ना होकर, मुक्त संगो अनहमवादी अहंकार रहित धृति उत्साह समन्वित दृढ़ता पूर्वक और पूरे निश्चय के साथ उत्साह पूर्वक समन्वित सिद्धि असिद्धो हो निर्विकार, चाहे वो यशस्वी हो या यशस्वी ना हो, इन चीजों से आसक्त ना होकर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। जो ऐसा करता है वो सात्विक गुण में स्थित है। तो प्रभुपाद जी तात्र में इसको समझाते हैं। गीता में बताया गया है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तीन गुणों में होने के कारण अपने आप हम लोग कार्य करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विवार्षणीय बलादिवन्युत, बलपूर्वक हम क्यों कुछ कार्य में लग जाते हैं न चाहते हुए भी। तो भगवान ने कहा, कामयेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, काम वासना से लिप्त होकर या क्रोध में आकर या लोभ से व्यक्ति बहुत ही उत्साहपूर्वक कार्य करता है। एक लोभी व्यक्ति बहुत उत्साह है उसमें चीजों को प्राप्त करने के लिए, एक कामी व्यक्ति बहुत तीव्र उत्साह होता है उसके अंदर, क्रोध में आकर व्यक्ति बड़ा उत्साह से बहुत कार्य कर लेता है। पर अगर ये गुण ना हो तो फिर सारा उत्साह नष्ट हो जाता है। तो व्यक्ति नहीं कर रहा है बल्कि ये गुण करा रहे हैं कार्य। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से वो कहता है कि मैं कर रहा हूं। तो अगर रजो और तमोगुण से वो मुक्त हो गया तो फिर रहा क्या, कहां से स्फूर्ति मिलती है उसको। अनहमवादी, अहंकार नहीं है। तो यहां बताया गया धृति उत्साह समन्वित, धृति और उत्साह, निश्चय और उत्साह के साथ कार्य करता है वो। तो ये कहां से आता है, कहां से वो स्फूर्ति मिलती है उसको। श्रील रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में कहते हैं कि छह चीज भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, छह गुण देहो दास, छह गुण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम लोग प्रामाणिकता से भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं। और उनमें से पहला चीज है उत्साह। उत्साह होना जरूरी है, बिना उत्साह के कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। इस भौतिक संसार में भी कुछ चीज को प्राप्त करना है तो उत्साह होनी चाहिए। यशस्वी वही होता है जो उत्साह है जिसके अंदर। जहां उत्साह नहीं है वो मरा हुआ आदमी है। एक मृत शरीर लीजिए, एक मरा हुआ शरीर, और उसको बड़ा बड़ा प्रवचन दीजिए, मरा रहेगा, उठेगा नहीं। उसमें अगर बैंड बजाएंगे, बड़े बड़े रोमांच होने वाले बड़े बड़े अच्छे अच्छे वाद्य बजाएंगे, फिर भी वो मरा रहेगा, क्योंकि वो मरा हुआ शरीर है, मृत शरीर है। तो जहां चेतना है वहां उत्साह है, चेतना जहां भी है वहां उत्साह होनी चाहिए। और ये शरीर जो है ये जड़ है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार जड़ जड़ चीजों से बना हुआ है। तो जब तक हम शरीर के स्तर पर हैं तब तक उत्साह नहीं आएगा, और जब तक हम अपने आप को आत्मा के स्तर पर लाते हैं तब तक हमको उत्साह रहेगा। हम देखते हैं महान भक्त कहां से उनको इतना उत्साह आता है कि लगातार प्रचार करने में हम थक जाते हैं। तो कैसा है कि उनको इतना उत्साह है? शरीर स्वाभाविक है कि शरीर थोड़ा ढीला पड़ जाता है, शरीर थोड़ा थकावट आ जाती है। शरीर मतलब जड़ और आत्मा मतलब चेतना। तो जब तक हम अपने आप को शरीर के संबंध में ला देते हैं तो तमोगुण में आ जाते हैं। तमोगुण मतलब आलसपन। रजोगुण में उत्साह है पर गलत दिशा में, काम क्रोध लोभ से उत्साह आता है। पर भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए कम से कम सत्वगुण में आना जरूरी है, और वहां धृति उत्साह समन्वित। तो अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो उत्साह होनी चाहिए, तो पहला चीज है। अब ये उत्साह मतलब प्राण, प्राण है, प्राण है मतलब उत्साह है। अब कैसा इस उत्साह को मार्ग स्फुरित करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद समझाते हैं बहुत सुंदर से, उत्साह की व्याख्या करते हैं। वो प्रयास जो कृष्ण भावना में बुद्धि लगाकर किया जाता है वो उत्साह है। एंडेवर एग्जीक्यूटेड विथ इंटेलिजेंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एंथुसियाज्म। पहला चीज है प्रयास। जहां उत्साह है वहां प्रयास होना चाहिए, पर ये प्रयास ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए जो निरर्थक साबित हो अंत में। जैसे पिछले श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल पौर्णिमाग्र जनसंग षड्भिर् भक्ति विनश्यति। फालतू प्रयास करेंगे तो भक्ति का नष्ट हो जाएगा। कौन सा प्रयास? दो प्रकार के प्रयास है। एक है ज्ञान प्रयास। ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। अगर भगवान की भक्ति प्रयास प्राप्त करना है तो ज्ञाने प्रयास उदपास्य, लात मार के ज्ञान के प्रयास को निकाल दो। आप बोलेंगे फिर क्या है, फिर हम लोग प्रवचन सुनने क्यों आते हैं? ये सब ज्ञान की बातें सुनने क्यों आते हैं? प्रसाद खाओ, कीर्तन करके चले जाओ, फिर ये कितना बड़े बड़े ज्ञान क्या सुनना है। पर ब्रह्मा जी कहते अगर भगवान की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले ज्ञान का प्रयास छोड़ दो, ये फालतू प्रयास है। कौन सा प्रयास, अरे कौन सा ज्ञान हमारे लिए निरर्थक है? शुष्क ज्ञान जो भगवान से संबंधित नहीं है, जो शून्यवाद की ओर या निर्विशेषवाद की ओर ले जाता है, जो हमारा उत्साह को नष्ट कर देता है, ऐसा प्रयास छोड़ देना चाहिए। बहुशास्त्री बहुवाक्य चित्त भ्रम होय साध्य साधना श्रेष्ठ न होय निश्चय। कभी कभी लोगों को बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग हजारों अलग अलग प्रकार के पुस्तक पढ़ के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। बहु शास्त्र बहु वाक्य, बहुत सारे शास्त्र और बहुत सारे अलग अलग लोगों की उसके जो तात्पर्य है ये सब पढ़ेंगे, चित्त भ्रम होए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो दो चीज निश्चय नहीं हो पाता है, साध्य साधना श्रेष्ठ। जीवन का परम साध्य क्या है ये निश्चय नहीं हो पाता है। कोई कहता है कि तुम भी भगवान हो मैं भी भगवान हूं, अंततः इसको समझना ही साध्य है। कोई कहता है भगवान है नहीं, भगवान रिटायर हो गए, बस भगवान ने बेचारे शुरू किए, बाद में देखे तंग आ गए, उन्होंने भी शटर बंद करके चले गए, बस बोले तुम लोग जो करना करो मेरे कुछ लेना नहीं। उनका कहना है कि भगवान है ही नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि भगवान निर्विशेष है, कोई कहता है भगवान आप है हम भी है, सिर्फ साक्षात्कार करना है। इस तरह से अलग अलग धारणाएं लोगों की है। तो ये ऐसा प्रयास, ऐसा शुष्क ज्ञान, ऐसे फालतू ज्ञान जो अंततः साध्य, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधना क्या है वो जो नहीं आए मालूम, व्यवहार वो व्यर्थ है। ऐसे ज्ञान का प्रयास फालतू प्रयास है। फिर दूसरा प्रयास है कर्म प्रयास। भागवत में वर्णन है कि श्रम एव ही केवलम, वो सिर्फ फालतू श्रम है जो धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादये यदिरतिम श्रम एव ही केवलम। अपने अपने धर्म में स्थित है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, धर्म स्व अनुष्ठित, अपने अपने धर्म में अनुष्ठित हैं हम लोग, पर साथ साथ में अगर विक्षोभ से इन कथासु यह भगवान के कथा में आसक्ति उत्पन्न नहीं हो रहा है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है ये सब कार्य करते हुए, तो फिर श्रमये वही केवलम। सारे वैदिक नियमों का पालन करते हुए अगर साध्य की ओर नहीं बढ़ रहे तो हमारा प्रयास व्यर्थ है। श्रमये वही केवलम, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, मुझे कोल्हापुर के एक जगह से दूसरे दिशा में जाना, एक अंत से दूसरे अंत तक जाना मुझे, या मुझे सिटी के एक अंत से दूसरे अंत में जाना है, तो मुझे मालूम है कि मुझे वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए मेरे पास एक गाड़ी है, और गाड़ी को सुरक्षित वहां पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाया है, सिग्नल बनाया है, ट्रैफिक रूल्स बनाया है कि सब लोग बाईं ओर जाना चाहिए और जहां लाल बत्ती आएगा वहां रुकना चाहिए। तो ये सिग्नल बनाने का और ट्रैफिक रूल्स बनाने का उद्देश्य क्या है? वो ट्रैफिक रूल्स पालन करने का और सिग्नल को पालन करने का उद्देश्य ये है कि सुरक्षित रूप से हम लक्ष्य पे पहुंचे। पर अगर एक व्यक्ति सारे नियमों का अच्छी तरह से पालन करता है, कोई भी रोड नियम तोड़ता नहीं है, वो कोई भी नियमों को तोड़ता नहीं है, सारे ट्रैफिक रूल, जहां लाल बत्ती है रुकता है, हरा बत्ती है तो चलता है, पर दिन के अंत में जहां से शुरू हुआ वहीं पहुंच जाता है, पर उसने एक सिग्नल भी नहीं तोड़ा, तो फायदा क्या हुआ? श्रम ये वही केवलम, सारे नियमों का पालन किया, कोई भी रोड रूल नहीं तोड़ा, कोई पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, पर वापस जहां से शुरू किया था सुबह वहीं पहुंच गया, लक्ष्य नहीं मालूम उसे। तो सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, सुबह उठ के हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और अपना घर का देखभाल कर रहे हैं, अपने बच्चों को खिला पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जीवन का साध्य क्या है और उसको प्राप्त करने की साधन क्या है वो अगर नहीं मालूम श्रमय वही केवल। तो ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। तो कैसा प्रयास होना चाहिए? तीन प्रकार के लोग हैं संसार में। पहला है वो व्यक्ति जो समझता है कि ये संसार ही सब कुछ है बस, और संसार को भोग करना, मेरे काम वासना को तृप्त करना जीवन का उद्देश्य है, उसको संसार के अलावा और कुछ नहीं मालूम। तो वो गधे के समान काम करते रहेगा और भोग करने की कोशिश करेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता रहेगा। ऐसे लोगों के लिए कर्म योग बताया गया है, जिसके हृदय में काम वासना है और जो संसार के अलावा और कुछ चीज नहीं मालूम उसको। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग जानते हैं ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्तन, ब्रह्म लोक से लेकर नीचे तक सब दुखालयम अशाश्वतम, सब दुख का आलय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है और अशाश्वत है। इसीलिए वो कोई कर्म करने की इच्छा ही नहीं उसको, सब माया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब मिथ्या जगत में क्या करना है हमको? तो चुपचाप बैठ जाता है, कर्म करने की इच्छा नहीं उसको। ऐसे लोगों के लिए ज्ञान का मार्ग बताया है। पर जिस व्यक्ति को हृदय में बहुत सारे कर्म भोग करने की इच्छाएं हैं, पर वो बुद्धिमान ये भी जानता है कि ये भौतिक संसार की सारी चीजें नश्वर है, वो व्यक्ति, उसके अंदर एक खासियत है कि उसको श्रद्धा है। श्रद्धा है क्या? कि इस भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक संसार है जहां भगवान निवास करते हैं, और उस आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करना भक्ति के द्वारा वो मेरा लक्ष्य है। भगवत धाम को जाना मेरा साध्य है, और वो साध्य करने के लिए भक्ति जो है वो साधन है। ये श्रद्धा जिस व्यक्ति के हृदय में है उसके लिए भक्ति। और भक्ति का मतलब क्या? भक्ति का मतलब उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, पर उसे यह भी मालूम है कि पूरे संसार में सब कुछ नश्वर है, अंतमह नष्ट होने वाला है, पर उसे मालूम है कि ये शरीर एक बहुत ही सुंदर साधन है साध्य को प्राप्त करने के लिए। यहां से आपको बंबई जाना है और आपके पास एक गाड़ी है, आप गाड़ी नहीं है, आप गाड़ी के अंदर ड्राइवर हैं, पर गाड़ी जरूरी है, हमें यहां से बंबई जाना है। तो आसक्ति, अगर गाड़ी से बहुत आसक्ति हो गई और हम कहेंगे अगर गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगा, इसीलिए खड़ा करके हर रोज इसको पॉलिश करते रहेंगे, इसको चलाएंगे नहीं, वो एक प्रकार की मूर्खता है। और दूसरी मूर्खता है, हम थोड़ी गाड़ी है इसको चलाते रहो, ना पेट्रोल डालो ना हवा डालो ना कुछ, बस चलाते रहो क्योंकि हम थोड़ी गाड़ी है। तो उसको पूरा नकार देना शुष्क ज्ञान का मार्ग है, और उसको भोग करना, उसको चलाना ही नहीं, वो दूसरा चीज है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है, वो समझता है मैं गाड़ी नहीं हूं, गाड़ी एक साधन है, पर यह साधन से साध्य को प्राप्त किया जा सकता है, और इसीलिए अच्छे तरह से इसको देखभाल करके इसे साध्य तक ले जाना मेरा कर्तव्य है। और वो साध्य जो है, वो साधन जो है, बड़े उत्साह पूर्वक करता है, बड़े उत्साह पूर्वक उसकी देखभाल करता है, पर इतना नहीं कि उसमें अटक जाए, और इतना भी उसको अवहेलना नहीं करता है जिससे वो उसको बर्बाद कर दे। तो ये हो गया उत्साह, इसको कहते हैं प्रयास। वो प्रयास जो भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए एक संसार को चलाना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा काम काज है, क्यों चला रहा हूं? ताकि ये सब को जिम्मेदारी निभाते हुए मैं अपना कर्तव्य को प्राप्त करूं। बड़े उत्साह पूर्वक सब चीज को कर रहा है, ये जो प्रयास है ये प्रयास अनुकूल है भक्ति के प्रति। तो इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, उनको भगवान की भक्ति में लगाना, ये प्रयास ठीक है। तो वापस, ये जो हम लोग ज्ञान सुन रहे हैं इधर, ये कैसा प्रयास है? ये ज्ञान नहीं है, ये शुष्क ज्ञान नहीं है, ये एक भक्ति का मार्ग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो है हम लोग श्रवण कर रहे हैं, भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, भगवान की शक्ति क्या है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, ये ज्ञान को श्रवण करना ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति का एक अंग है श्रवणम। क्योंकि सुनेंगे नहीं कि किसका कीर्तन करना है तो किसका कीर्तन करेंगे, हमारा खुद का कीर्तन करेंगे? तो सुनना तो चाहिए, और किससे सुनना चाहिए? जिसको सब ज्ञान है, जो जो ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा है सही तरह से। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम्। भगवान की भक्ति करने से, नवदा भक्ति करने से अपने आप ज्ञान और अपने आप वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य मतलब जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करेंगे, जो भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको हम त्याग करेंगे। तो ये हो गया प्रयास, भक्ति का प्रयास। आपको यहां हर शनिवार या हर रविवार को यहां आने के लिए प्रयास है, थोड़ा पैसा खर्च कर 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 गाड़ी लेके यहां आना पड़ता है। भगवान की भक्ति में अपने परिवार को संभालना प्रयास है। कोई तीर्थ यात्रा में जाना प्रयास है। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद भोग लगाना, उसके लिए पकाना और सुंदर सुंदर कार्यक्रम का इंतजाम करना प्रयास है। पर यह प्रयास जो है भक्ति के लिए अनुकूल है। तो उत्साह का पहला परिभाषा है कि प्रयास, पर दूसरा चीज है जो बुद्धि के साथ लगाया जाए। कभी कभी आदमी इतना उत्साह आ जाता है उसको कि हो सकता है वो अपना बुद्धि का प्रयास नहीं करेगा, बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा, और बाद में देखेगा अरे मैं प्रयास में कहीं दूर चला गया। तो बुद्धि लगानी जरूरी है। ये बुद्धि क्या है, एक उदाहरण बताता हूं मैं। शिला प्रभुपाद जी जब पहली बार पाश्चात्य देश से बंबई में आए तो उन्होंने कार्यक्रम का इंतजाम करने को बोला, बड़ा पंडाल प्रोग्राम इस्कॉन का इंतजाम करने के लिए बोला। तो उस समय उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था गिरिराज स्वामी, तो उन्होंने सारा जिम्मेदारी खुद ले लिया, संपूर्ण जिम्मेदारी, पंडाल खड़ा करना, प्रसाद का यह करना, सारा जिम्मेदारी खुद ले ली। और करते 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 चार पांच दिन, बड़ा मतलब 20,000 लोग आना, उसके लिए इंतजाम करना, अंत में एकदम थक गए। और जब प्रोग्राम चल रहा था कहीं सो रहे थे, और बाद में थके हुए प्रभुपाद जी के पास गए, बोले मेरे से संभालने नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी बोले तुम मूर्ख हो। बोले मूर्ख, सब इंतजाम किया और बोले मूर्ख हो। बोले सुनो, चार प्रकार के लोग होते हैं, एक आलस मूर्ख, एक क्रियाशील मूर्ख, दूसरा एक क्रियाशील मूर्ख, दूसरा है आलस मूर्ख, और तीसरा है क्रियाशील बुद्धिमान, और चौथा है आलस बुद्धिमान। बोले तुम इसमें से कौन बनना चाहते हो? बोले मैं समझा नहीं। बोले सुनो, एक व्यक्ति है जो बहुत क्रियाशील है पर मूर्ख है, जैसे बंदर लोग, बंदर लोग देखे होंगे, बंदरों में क्या उत्साह होता है, एक जगह 2 मिनट बैठे नहीं हो लोग, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर फुदकते रहते। पर जितना ज्यादा फुदकते उतना तकलीफ मचाते हो, क्योंकि मूर्ख है, उसे नहीं मालूम क्या करना है। अगर यहां आ गया एक बंदर और उत्साह पूर्वक घूम रहा, हमको उत्साह नहीं मिलेगा उसको देख के, क्योंकि सबको तोड़ फोड़ के रख देगा। तो उत्साह है पर मूर्ख है, तो बोले ऐसा नहीं बनना चाहिए, उससे अच्छा है आलस मूर्ख। मूर्ख है पर आलसी है, चुपचाप सोए रहेगा, चलो अच्छा है, कम से कम किसी को तकलीफ नहीं करेगा। उसके बाद हुआ क्रियाशील बुद्धिमान, वो बोले वो तुम बुद्धिमान हो, तुमने इतना बड़ा प्रोग्राम का इंतजाम किया पर तुम क्रियाशील, मतलब तुम ही सब कुछ कर रहे थे और इसीलिए तुम थक गए। एक व्यक्ति कितना कितना कर पाएगा? तो फिर उन्होंने बोला तुम्हें मालूम होना चाहिए किस तरीके से पूरा कार्य निभाना, अच्छे तरह से सबको ऑर्गेनाइज करके निभाना, ये बुद्धिमान आलस बुद्धिमान। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, अभी आप बोल रहे हो उत्साह होना चाहिए, फिर बोल रहे हो आलस, बोले नहीं, आलसपन मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठे हुए। कभी कभी एक कंपनी का डायरेक्टर लगता है वो चुपचाप आलसी है, बैठा हुआ है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि हाईकोर्ट में आप जाएंगे तो वहां वो गुमास्त जो बैठा हुआ है वो बहुत क्रियाशील है, थप्पा मार रहा है, सुबह से शाम तक थप्पा मार रहा है, इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है, उसको 1000-2000 मिलता है। और जो जज ऊपर बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, और उसको 20,000 पगार। बोले क्यों? बोले बाहरी रूप से बैठा हुआ है पर वो पूरा बुद्धि लगा रहा है कि कैसा सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। वहां बैठने के लिए उसको पगार दिया जाता है 20,000 रुपया, क्योंकि वो जो निर्णय लेना पड़ता है बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से बुद्धि लगा के किस प्रकार से काम को कराना हमारे जीवन में, दूसरा तो दूर की बात, हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं बहुत सारे चीजों को करते हुए कि जो चीज करना है उसके लिए हमको टाइम नहीं। उत्साहपूर्वक सब काम करते हैं और जब मेन काम करना है भक्ति, उस समय सो जाते हैं, थक गए, क्योंकि हमने बुद्धिमत्ता से अपना दिनचर्या को ठीक से लगाया नहीं, जोड़ा नहीं, और बाद में सच है बहुत समय बर्बाद हो गया मेरा। मेरी इच्छा थी वो सब करने की पर टाइम नहीं मिलता है, यानी हमने उसको ठीक तरीके से नहीं लगाया। तो इंटेलिजेंस, बुद्धिमान होनी चाहिए लोगों को कि कैसा, मेरे को जाना उतना दूर है, शक्ति मेरे पास इतनी है, तो उसको केंद्रित करना। इंटेलिजेंस मतलब फोकस करना हमारे उत्साह को, अगर सही जगह पे उत्साह डाला जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, हम लोग जब छोटे थे स्कूल में तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या बोलेंगे, भिंग, आपने देखा होगा, तो हमको एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया था, सबको एक एक भिंग दिया गया था। उसमें हम लोग भी अपनी क्रियाशील बुद्धि को उपयोग करते थे, क्या क्या करना है उसमें। अब समझ लीजिए आपके पास एक पेपर है और उस पेपर और एक भिंग है आपके पास, आपके पास माचिस नहीं है और इस पेपर को जलाना जलाना चाहिए। तो आपके पास भिंग है, सुबह है, दोपहर का सूरज चमक रहा है, और आप उस पेपर को सूरज में रखिए और उसके ऊपर भिंग को रख दीजिए, पूरा दिन नहीं पूरा साल भर भी वहां रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, पेपर थोड़ा गर्म होगा फिर ठंडा हो जाएगा। पर जो बुद्धिमान है वो जानेगा, उसको थोड़ा एक एंगल पे रखो अगर आप भिंग को, और जो सारा सूर्य किरण वो छोटा सा है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, मीन 1 इंच या 2 इंच का डायमीटर होगा, उसमें कितना सूर्य का किरण गिरता है, बस छोटा सा गिरता है, पर अगर वो सही एक ही दिशा में मतलब एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाए तो क्या होता है मालूम है आपको, कुछ सेकेंड के अंदर, आधे मिनट के अंदर पेपर से धुआं आना शुरू हो जाएगा और 5 मिनट के अंदर पेपर जल के राख हो जाएगा। इसी तरह से हमारा हृदय जो है अनंत कोटि जन्मों से कर्म का भरा हुआ है, कर्म के फल बीज भरे हुए हैं, संचित कर्म, और मनुष्य योनि जो है एक भिंग के समान है, और सूर्य की किरण जो है वो मनुष्य जीवन में थोड़ी शक्ति दी गई है हमको, पर वो शक्ति को अगर सब चीज करने में, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है बोलकर इतना फैला के अगर पेपर के ऊपर डाले तो पेपर नहीं जलेगा। पर ये समझते हुए कि ये भिंग का एक काम है, यानी सूर्य में बहुत सारी शक्ति है पर ये भिंग जो है उस सूर्य का एक किरण को बस इतना 2 सेंटीमीटर या 2 इंच डायमीटर उतना ही ले सकता है, हालांकि कम शक्ति है वो, पर वो शक्ति को अगर एक जगह केंद्रित करके डाला जाए तो सारा पेपर को जला के राख कर सकता है। शास्त्र बताता है, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि यस्त्विंद्र गोपमथवेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजनमातनोति। इंद्र, इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक सब व्यक्ति अपने कर्म बंधन में फंस रहे हैं। कोई कर्म योग कर रहा है, कोई ज्ञान योग कर रहा है, कोई अष्टांग योग कर रहा है, पर वो प्रयास जो है उत्साह पूर्वक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसके द्वारा मैं अपने जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त करूंगा और ये कर्म बंधन को नष्ट कर दूंगा, पर नहीं होने वाला। पर वही वही जो थोड़ी बहुत शक्ति भगवान ने दी है और मनुष्य जीवन में थोड़ा बहुत समय दिया है, थोड़ी बहुत बुद्धि दी है, उसको अगर बुद्धिमता से भगवान की सेवा में लगाया जाए तो ना ही सिर्फ आपको फायदा है, ना ही सिर्फ आपके इमीडिएट परिवार को फायदा है, पर पूरे ब्रह्मांड को फायदा है। क्योंकि जड़ में अगर पानी डालेंगे तो धड़ डाली पत्ता फूल फल सबको पहुंच जाएगा। तो ये उत्साह कहां केंद्रित करना है, ये इंटेलिजेंस, दिस इज इंटेलिजेंस, ये बुद्धिमत्ता है कि समय हमारे पास कम है, ज्यादा से ज्यादा अगर सौभाग्यशाली है तो 100 साल, नहीं तो 80 साल। 80 साल क्या, 60 साल के बाद अपने शरीर को देखभाल करने में चला जाएगा। 40-50 साल तक जो थोड़ी बहुत शक्ति है उसमें जो किया किया, उसके बाद भक्ति करना, अपना साधना करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत कम समय है, कम शक्ति है, मनुष्य योनि में कलयुग में आयु कम है, अगर उसको हम लोग ऐसे गंवा देंगे तो खत्म। तो एक चीज है आदव श्रद्धा, भक्त में श्रद्धा है और उस श्रद्धा के आधार पर वो उत्साह होनी चाहिए कि कहां उसको केंद्रित करना चाहिए। और प्रयास बुद्धि से उपयोग किया कृष्ण भावना में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्रयास, कितने लोगों के पास प्रयास करने की शक्ति है, बुद्धि भी है, पर कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तो उस बुद्धि को कहां डालना है, कैसे डालना है, नहीं समझ में आएगा। बुद्धि मतलब IQ पावर नहीं, बुद्धि मतलब भक्ति करने की। भागवत बताता है यजंति ही सुमेधसा कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम सांगो बांगला सर्वाश्रदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। मेध मतलब बुद्धि, सुमेधसा मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, सही में जो भक्ति को स्वीकार करता है बड़ा बुद्धिमान आदमी है। अल्प मेधसा कम बुद्धि वाले लोग वो है जो किसी और का आश्रय लेंगे, जो आपको हमेशा कोई भी आश्रय नहीं दे सकता, एक ही व्यक्ति हमको आश्रय दे सकता है और वो है कृष्ण। इसके अलावा जहां भी आप आश्रय लो अंत में आप निराश्रय हो जाओगे। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया, कई देवी देवताओं का लोगों ने आश्रय लिया, पर देवी देवताओं का भी नाश होने वाला, तो हमारा क्या होने वाला, वो उनके अनुयायी और उनका ग्रह सभी नष्ट होने वाला है। आ ब्रह्म भुवना लोक, ब्रह्म लोक से लेकर नीचे महाप्रलय में सब नष्ट हो जाएगा। सिर्फ भगवान के चरण कमल समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम, तो इसको आश्रय लेना बुद्धिमान बुद्धिमता है। तो कृष्ण भावना भावित होना, भगवान की भक्ति में लगना उत्साह पूर्वक, ये बुद्धिमता है। कृष्ण भावना में लगना मतलब क्या, शुद्ध मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या कहते हैं, उद्देश्य, उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। ये कर रहे हैं ताकि हमको इसमें से कुछ फायदा मिले, थोड़ा ये मिल जाए वो भी मिल जाए, नहीं, जहां तक हमारा उद्देश्य सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है तब तक वो शुद्ध नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, शुद्ध होने में बहुत समय लग जाएगा। हमको शुद्ध होना चाहिए, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, वो उत्साह। क्योंकि जैसे मैंने बताया कभी कभी काम वासना से लोगों में उत्साह आती है। एक क्रोधी व्यक्ति उत्साह पूर्वक पूरे एक देश को जीतने की कोशिश करता है, लोभी व्यक्ति भी बहुत कोशिश करता है, पर एक बार वस्तु मिल गया तो उत्साह चला जाता है, पर यह उत्साह हमेशा के लिए, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए। दूसरा, एक सदगुरु के निर्देशन में होना चाहिए। जब तक सदगुरु के निर्देशन में ये हमारा उत्साह जो शक्ति है उसको एक डायरेक्शन नहीं देंगे, बाद में हम पछताएंगे। कभी कभी इवन भक्ति में आने के बाद भी हम शुद्ध नहीं है, और नहीं होने के कारण कभी कभी हमारा उत्साह जो है वो गलत दिशा में जा सकता है, पर अगर एक सदगुरु का आश्रय लिए और उनके मार्गदर्शन में हम लोग कार्य करते हैं तो हमें शत प्रतिशत विश्वास होनी चाहिए कि ये जो उत्साह है सही दिशा में जाएगा। क्योंकि उत्साह का स्वभाव है कि कभी कभी जैसा नदी जब बहता है तो जहां भी जगह मिला वहां बह जाता है, पर उसको एक दिशा में डालना भेजना बहुत जरूरी है, सही दिशा में केंद्रित करना जहां हमारा भला हो और सबका भी भला हो, तो मार्गदर्शन में करना, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक हमारा शुद्ध इच्छा होनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, और दूसरा मार्गदर्शन गाइडेड, प्रॉपरली गाइडेड अंडर ए स्पिरिचुअल मास्टर, एक दक्ष सदगुरु के आश्रय में करना चाहिए, और तीसरा यूटिलाइजिंग एवरीथिंग, भगवान की भक्ति में किसी चीज को उपयोग किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं उपयोग किया जा सकता, वो नहीं उपयोग किया जा सकता, नहीं सब कुछ उपयोग किया जा सकता है। अरे अस्त्रों को शस्त्रों को उपयोग किया जा सकता है भगवान की भक्ति में, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को उपयोग किया भगवान की भक्ति में, कोई भी चीज हमारे पास बोलने की शक्ति है उसको भगवान की सेवा में उपयोग किया जाता है, हमारे पास कुछ बुद्धि है कुछ कला है कुछ फैसिलिटी है हमारे पास, ठीक है उसको भी भगवान की सेवा, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो भगवान की भक्ति में नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि सारी सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान की सृष्टि है और भगवान से आया हुआ है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः, भगवान गीता में कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, सब कुछ मेरी शक्ति है अर्जुन, सब जगह मैं स्थित हूं, अपने आप में कोई चीज अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। उदाहरण के लिए माइक्रोफोन, आप बोलेंगे छी 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 ए माइक्रोफोन से मेरा लेना देना क्या, मेरे को तो भगवान से लेना देना, पर भगवान की भक्ति करने के लिए ये माइक्रोफोन की जरूरी है, अगर ये माइक्रोफोन मैं उपयोग नहीं करता तो शायद पीछे बैठे वाले सुन नहीं पाते, भक्ति नहीं करेंगे, इसका उपयोग है। पर उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए और हमारा उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हम उतने शुद्ध नहीं है कि सब चीजों को लेकर शुद्ध रहे। कभी कभी भक्ति में हमको बहुत सारा यश मिल जाता है, कभी हमको भक्ति में बहुत सारा संपत्ति मिलती है, कभी धन मिलता है, कभी कोई गाड़ी, कल अगर आप प्रेसिडेंट बन गए तो आपको गाड़ी मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको बहुत सारे लोग आपके नीचे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर वो उद्देश्य बदल जाए। तो ये तीन चीज बहुत जरूरी है, सब चीज का उपयोग हो सकता है कृष्ण की सेवा में, अगर हम सही मार्गदर्शन पे शुद्ध भावना से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते रहें, और ऐसी श्रद्धा में अगर करेंगे तो समय की बात है जब शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाएगा। दो प्रकार की भक्ति बताई गई है, निष्ठिता अनिष्ठिता, धृति उत्साह समन्विता, भगवान कहते हैं उत्साह होनी चाहिए पर धृति दृढ़ विश्वास निश्चय होनी चाहिए, वो निश्चय निष्ठिता अनिष्ठिता। निष्ठिता भक्ति मतलब किसी हालत में हमारी भक्ति भगवान की चरण कमलों से बदलेगी नहीं, और अनिष्ठिता मतलब आज अच्छा मूड है मन बहुत खुश है आज 64 माला करेंगे, और कल थोड़ा मूड ठीक नहीं है तो एक माला भी बोझा पड़ जाएगा, अनिष्ठिता दृढ़ संकल्प नहीं है। आदव श्रद्धा, हम सब श्रद्धालु हैं तभी तो यहां आए हैं, ये तो इतना तपस्या करके यहां आते क्यों, आदव श्रद्धा तथा साधु संघ, इसीलिए तो साधु संघ में आए हैं हम लोग, श्रद्धा नहीं होता तो आज यहां नहीं आएंगे, आते नहीं, आदव श्रद्धा तथा साधु संघ, इसीलिए साधु संघ में आए। पर साधु संघ का मतलब क्या, साधुओं के बीच बैठ के उल्टा सीधा बातें करना, नहीं, साधु संघ मतलब कृष्ण और कृष्ण का जो सेवा है उसके अलावा और कुछ बातचीत नहीं होना चाहिए। अगर दो साधु मिलकर चर्चा करेंगे कि आज का पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, इधर दो साधु मिलकर चर्चा करेंगे कौन सा फिल्म बहुत अच्छा है, कौन सा हीरो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, दो साधु संग नहीं है, हालांकि दो साधु बैठे हुए हैं। हरे कृष्ण, साधु मतलब जहां सत्संग, सत मतलब परम सत्य का, और उसकी कैसे प्राप्त किया जाए, एक दूसरे को स्फूर्ति मिले, वो सत्संग है। तो आदव श्रद्धा तथा साधु संग, और जब साधु संग में आते हैं तो यहां से सुनना और यहां से छोड़ना नहीं, तथा वचन क्रिया, जब जो चीज हमने सुना है नम्रता पूर्वक उसे प्रामाणिकता से पूरी कोशिश के साथ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, उसको कहते हैं भजन क्रिया। जब भजन क्रिया यानी हम डिसाइड करते हैं चलो हम जप करेंगे, हम भक्तों के संग में आएंगे, पर भक्ति तो शुरू किया हमने, पर उसमें बहुत सारे हृदय में अनर्थ हैं, अनर्थ निवृत्ति से तथा निष्ठा, वो दृढ़ता निष्ठा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारे बाधाएं हैं, बहुत सारे इंपेडिमेंट्स। जैसे अगर छोटी सी कोई नदी है और बह रही है और सामने बहुत सारे चट्टान, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े रेगिस्तान आ गए तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा। पर अगर गंगा जैसे बहे पानी एकदम कंटिन्यूसली बहते रहे तो जितना बड़ा चट्टान क्यों ना आ जाए, पूरा रेगिस्तान क्यों ना आ जाए, और वो बहते बहते जब तक समुद्र के पास नहीं मिलेगी तब तक चलते रहेगी। तो इस तरह से भगवान की भक्ति करने से भगवान देंगे शक्ति, और वो शक्ति दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, अगर दृढ़ता पूर्वक उत्साह पूर्वक हम चलेंगे। श्रद्धा का अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है और उसके हृदय में, उसके जीवन, उसके शरीर में और उसके प्राण, उसके हृदय में उत्साह नहीं है, तो उसका जो श्रद्धा है नाम के वास्ते। Enthusiasm is the faith. Enthusiasm is the life of faith. Faith without enthusiasm is dead. श्रद्धा बिना उत्साह के मरा हुआ है। प्राण 5000 से हेतु प्रचार, प्राण है तो फिर मरे हुए लोग हैं हम लोग। अगर ये प्रवचन किसी मुर्दे को दे तो वो थोड़ी उठ के भक्ति करना शुरू करेगा, वो मुर्दा है क्योंकि प्राण है नहीं उसके अंदर। तो जिसमें प्राण है उसमें उत्साह आनी चाहिए, नहीं आया तो इसका मतलब वो श्रद्धा नाम के वास्ते श्रद्धा है, उसको विश्वास है नहीं, या श्रद्धा है पर अनर्थ से भरा हुआ है। एक छोटा चींटी है उसके ऊपर 5 किलो कुछ रख दो आप तो बेचारा क्या चलेगा, वो जो बैठ जाएगा चुपचाप। तो जिसके हृदय में पाप का घड़ा भरा हुआ है उसको बोला हाथ उठाओ, कैसे उठाएगा वो, कीर्तन में कूदो ऊपर, आपके एक दो 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 हाथ में 50-50 किलो का दो दो थैली दे दूं और बोलूंगा हरे कृष्णा बोलो हाथ उठाओ, कैसा उठाएगा, 50 किलो है, वेट लिफ्टर होगा कोई कुश्ती वाला होगा तो उठाएगा शायद, नहीं तो नहीं उठा पाएगा। तो अगर हृदय में कर्म बंधन भरे हुए हैं, पाप भरा हुआ है और उसको बोलो उत्साह पूर्वक कीर्तन करो, उठेगा नहीं हाथ उसका, क्योंकि अनर्थ है। तो अनर्थ अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं, शास्त्र बतलाता है, आचार्य कहते हैं पहला है उत्साहमयी। उत्साहमयी मतलब शुरू शुरू में एक भक्त आता है, क्या उत्साह उसके अंदर। एक व्यक्ति हमारे मंदिर आया बंबई में और 3 महीने के बाद आया, प्रभु जी 16 माला कर रहा हूं मैं, वेरी गुड। बोले बस अभी 2 चीज बाकी है मेरा, बस 2 ही चीज करना है क्या शुद्ध भक्ति के लिए। मैं बोला क्या, बोले काम कंट्रोल हो गया पूरा, क्रोध एकदम नहीं आता मेरे को, मद मोह मत्सर सब खत्म हो गया, सिर्फ लोभ थोड़ा बचा है वो खत्म कर देंगे, 6 महीने के अंदर हो जाएगा। उत्साहमयी, इतना उत्साह और फुलक रहेगा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है पर ये बहुत उत्साहमयी, इतना फॉल्स कॉन्फिडेंस, इतना आसान नहीं है प्रभु। नहीं तो बड़े बड़े महारथियों का यहां वर्णन हम लोग सुनते हैं, उनको कितना तकलीफ हुआ जीवन में, इतना आसान नहीं है। तो शुरू शुरू में कभी कभी ऐसा उत्साह आ जाता है, हमको भी कभी कभी कुछ अच्छा प्रवचन सुने तो उत्साह आ जाता है, पर चार दिन के बाद फिर से वापस। तो ये उत्साहमयी जो है ये क्यों ढीला पड़ जाते हैं? क्योंकि शारीरिक स्तर पर है, और शरीर मतलब जड़, और जड़ मतलब नीचे खींचना। कोई भी जड़ चीज है वो नीचे खींचता है, और आत्मा मतलब ऊपर ले जाना चाहती है। शास्त्र इसको कहते हैं निगम, शास्त्र का निगम, गम मतलब नीचे ले जाना, और निगम मतलब विरुद्ध ले जाना। शास्त्र का उद्देश्य है हमको ऊपर उठाना, हमारी चेतना को ऊपर उठाना, और पूरा संसार का नियम है नीचे खींचना। तो जब तक हमारे हृदय में उत्साह नहीं होगा तब तक खींच जाएंगे नीचे बस। बहुत जरूरी है उत्साहमयी, शुरू शुरू में उत्साह आता है पर अगर संग नहीं रहा तो धीरे धीरे हम लोग, ये पहला प्रकार का अनर्थ है उत्साहमयी। दूसरा है घन तरल, घन तरल मतलब कभी कभी एकदम घन घन ऐसा हम लोग करते भक्ति, और कभी कभी छह दिन का छुट्टी, कहां गया? नहीं, एक हफ्ता छुट्टी, किससे? भक्ति से। जैसा हम लोग काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे काम करते हैं और संडे छुट्टी, तो ऐसा घना घना तो हम कभी काम करेंगे और दो महीने की छुट्टी लेके साल में चले गए, क्या करने? बोले अभी भक्ति के लिए छुट्टी। घन तरल, ये एक प्रकार का अनर्थ है। फिर व्यूढ़ विकल्प, व्यूढ़ विकल्प मतलब कुछ संकल्प करते हैं और कर लेंगे, कल एकादशी है निर्जल है कर लेंगे, 12 बजे के बाद बोलते हैं उस समय जो बोला ना वो सब पूरा सब सोचा नहीं था, अगले साल करूंगा मैं, अभी नहीं बाद में करूंगा, उसको कहते हैं व्यूढ़ विकल्प। कुछ कल्प संकल्प किए और फिर बाद में ढीले पड़े। नियमाक्षमा, नियमाक्षमा मतलब कुछ हमने वचन लिया है पर हम उसमें हम ढीले पड़ जाते हैं, नियम में अक्षमा, थोड़ा ढीले पड़ जाना। और दूसरा है तरंग रंगिनी, तरंग रंगिनी मतलब भक्ति में कभी ऐसा जाते ऊपर, भक्ति करने से बहुत सारी चीजें मिल जाती है, ये आप जान लीजिए। जब आप भक्ति करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें फ्री में भगवान दे देंगे देखने के लिए। जैसे एक बच्चा कभी रोता है, जब रोता है तो मां बोलती है, वो बिजी है काम कर रही बेचारी, और बच्चा बोलता है नहीं अभी आओ मेरे पास आओ, तो मां क्या करती है उसको एक स्वीट दे देती है, स्वीट खा के चुप हो गया तो मां बोलती है चुप ठीक, पर वो बच्चा रोता रहता है नहीं 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 तुमको मैं चाहता हूं कि तुम आओ मेरे पास, तो उसको कुछ गुड़िया ला के देती है ये लो, और अगर वो खेलने में मस्त हो गया तो मां बोलती है ठीक है खेलते रहना तू बस, पर अगर वो मिठाई देगा मिठाई फेंक देगा, अगर कोई खिलौना देगा खिलौना फेंक देगा, और रोते रहेगा जब तक तुम नहीं आएगी तब तक मैं, तब मां को लगेगा अरे बाप रे अभी कुछ देने से नहीं चलेगा, अभी मुझको ही आके उसको गले लगाना पड़ेगा, तब जाके चुप होगा वो बच्चा। तो इस तरह से हम लोग भक्ति करते हैं तो भगवान हमारा परीक्षा लेते हैं, अच्छा किस लिए भक्ति कर रहा है? ये लो तेरे को अच्छा काम मिल गया, ये लो तुझे पैसा मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छे बच्चे मिल गए, सब कुछ हो गया, हरे कृष्णा धन्यवाद मैंने भक्ति किया मुझे मिल गया, अभी तुम भी खोज रहा हूं मैं भी खोज रहा हूं। तो बोलेगे ठीक है तुम खुश है तो ठीक है। भक्ति सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है भक्ति, इतने आसानी से नहीं मिलेंगे। भक्ति करेंगे तो भगवान थोड़ा दे देंगे, थोड़ा देखने के लिए कि तुम मेरी भक्ति मेरे से जो मिल सकता है वो प्राप्त करने के लिए कर रहा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए कर रहा है, मैं जो दे सकता हूं उन चीजों के लिए कर रहा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए कर रहा है। परीक्षा लेंगे तो पहला इंस्टॉलमेंट में सब कुछ फ्री में दे देंगे, चलो ये लो। हमारे मंदिर में एक भक्त आया, क्या भक्ति उत्साहपूर्वक, और उसका अच्छा कांटेक्ट हो गया, अच्छे अच्छे लोगों का कांटेक्ट हो गया, उसको अच्छा एक काम मिल गया, काम मिल गया तो भक्ति बंद हो गई उसकी। अभी जन्माष्टमी में एक बार आता है बस, थोड़ा डोनेशन देके जाता है, अरे मोटा तगड़ा हो गया अभी एकदम, झुकने भी नहीं होता है मंदिर में आते वक्त, ऐसा करके चला जाता है इतना मोटा हो गया खा पी के। तो भगवान ने दिया उसको, पर वो दिया पर भक्ति छूट गई उसकी। तो तरंग रंगिनी, जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में भगवान की सेवा में, तो सबसे पहले मेनका पर्वत, सोने की पर्वत ऊपर ऐसे आया, और साक्षात उस पर्वत ने कहा हनुमान जी को, ये सोने का पर्वत है, आप थोड़ा विश्राम करो, आप तो यहां से लंबा यात्रा पे जा रहे हो, संयोजन इस पे थोड़ा विश्राम करो। पर हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरे पास समय नहीं, मैं मेरे प्रभु के सेवा में निकला हुआ हूं, अभी रेस्टिंग, नो रेस्टिंग, उसका समय नहीं है। पर आपने कुछ दिया है, उसका अवहेलना असम्मान तो नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पर्श किया उसे, मैंने स्वीकार किया, स्पर्श किया उस पर्वत को, प्रणाम किया, चल पड़े। तो जब हम सदगुरु के इस पर, सदगुरु के उद्देश्य सेवा में, भगवान की सेवा में निकलते हैं, तो बहुत सारे फैसिलिटी मिलेंगे हमको, शायद पदवी मिलेंगी, शायद अनुयायी मिलेंगे। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहेतुकी त्वयि। न धनम, धन मिलेगा, खास करके इस्कॉन में आएंगे तो बहुत धन मिलता है। मैं ऐसे जब आजकल जैसे जिस प्रकार से गाड़ी में डाल जाता हूं, शायद मैं काम करता तो नहीं मिलता मेरे को, दिया भगवान ने। न जन्म, बहुत सारे अनुयायी सुनने वाले, अगर मैं जब काम करता था और जाके खड़े कर बोलूं तो चार लोग भी नहीं सुनेंगे, पर अभी प्रभु जी इतना बड़े हैं, यहां से आए हैं और जब लोग सुनने के लिए आते हैं। न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये कविताम, कभी कभी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा मूर्ख, मुखम करोति वाचालम, ऐसा मूर्ख जो फालतू व्यक्ति था, वो भक्ति में आने के बाद ऐसे हजारों लोगों को बड़ा बड़ा प्रवचन देना शुरू करता हो, और आश्चर्यचकित हो जाते घर वाले, अरे ऐसा कैसा, इसको सुनने के लिए इतने लोग आते। पर अगर उसमें वो तृप्त हो गया तो फिर रोजाना बोलते ठीक है पब्लिक स्पीच देते रहना तू। तो न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मैं भौतिक संसार में ही रखो चलेगा, मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे, बहुत भक्ति रही दुखी थी। ये अनिश्चितता, अनिश्चितता भक्ति बाधा है, और किसी चीज को बाधा से निकालना है तो ताकत होनी चाहिए। जैसा सामने कुछ पड़ा हुआ है, पाइप के अंदर कुछ गंदा है, तो उसको क्या करना चाहिए, फोर्सफुली अगर पानी मारो तो पाइप में जो जो अटका हुआ है सब निकल जाता है। इसी तरह से हमारे हृदय में अनर्थ है, और अनर्थ निकालना है तो उत्साह होनी चाहिए, वो शक्ति इतनी होगी वो जला के राख कर देगी। तो निष्ठिता तब होगी जब अनर्थ निवृत्ति। तो इस तरह से निष्ठिता भक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्साह होनी चाहिए। और हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि हरि नाम जब जब करते हैं, उसमें सबसे बड़ा अपराध कौन है, 10 अपराध बताए गए, पर हरि भक्ति विलास बताता है कि इसमें सबसे बड़ा ध्यान पूर्वक जप न करना, प्रमाद, इसको कहते हैं प्रमाद। और प्रमाद 3 प्रकार के होते हैं, जड़ विक्षेप औदासीन्य, और ये तीनों जो है ये उत्साह न होने के कारण। कभी शुरू करते हैं पर संकल्प औदासीन्य, मतलब ठीक है कल कर लेंगे, आज 14 हुआ कल 18 कर लेंगे चलेगा, उदासीन, मतलब उदासीन, ठीक है कल कर लेंगे ना, थोड़ी मर जाऊंगा कल सुबह, कर लूंगा ना, उतने अंदर थोड़ी भी गिर जाऊंगा, फॉल डाउन मेरा थोड़ी हो जाएगा, अरे कर लेंगे महाराज चलेगा। और जड़े जड़े मतलब शुरू किया उत्साहपूर्वक, सो गए बीच में, जड़पन आ जाता है। वही जितना भी थके हुए हो, अच्छा में टीवी प्रोग्राम आ जाए तो सोता आदमी खड़ा हो जाता है ऊपर, यानी उसमें जितना रस है इसमें रस नहीं है, वो स्वाभाविक है क्योंकि अनर्थ है, अनर्थ है, इसीलिए हमको थोड़ा उत्साह होने चाहिए ताकि कम से कम रस हो या ना हो, श्रद्धा पूर्वक किसी तरह 16 मारो तो ठीक से करेगा। और फिर विक्षेप, विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन, इधर उधर मन जाता है, ये स्वाभाविक है प्रमाद। और ये प्रमाद को दूर करना है तो एक ही तरीका है, उत्साह, वो उत्साह से धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा प्रमाद। तो इस तरह से ये बहुत जरूरी है कि हम इसको प्राप्त करें। अब फाइनली ये उत्साह को प्राप्त कैसे किए महाराज, वो तो बहुत सुन लिए, अच्छी बात है आपने कहा उत्साह, इसको प्राप्त कैसे किया जाए? शास्त्र में बताया गया है जैसा संग वैसा रंग। अब देखिए ये मेरा अनुभव है, कृष्ण भावना में आने से पहले जब घर में था मैं उत्साह पूर्वक उठता था, क्योंकि मैंने किसी ने बताया हमको जल्दी उठना चाहिए, उठता था चारों ओर देखा सब लोग सोए हुए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इनको, मैं भी सो जाता हूं बाद में उठता हूं, ये लोग उठने के बाद मैं भी उठता हूं, सो गया बस खत्म। तो अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति के मतलब, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ के चले जाओ, सबको उठाओ। तो ऐसा संग जिनके हृदय में श्रद्धा है, जिनके हृदय में उत्साह है, और वो है जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में, उनके शिष्य 20-20 साल की उम्र के ऐसा नहीं कर पाए जो 70 साल के बूढ़े प्रभुपाद में उतना उत्साह था, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं। हम उस स्तर पर कृत्रिम रूप से आ नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, पर कम से कम ऐसे लोगों, ऐसे हमसे जो थोड़ा वरिष्ठ है, वरिष्ठ मतलब सिर्फ उम्र में नहीं या सिर्फ कितने साल हैं ऐसा नहीं, जिसके अंदर वो उत्साह है श्रद्धा है, ऐसा लोगों का संग करेंगे स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो थोड़ा असर पड़ेगा, एक दो शब्द कुछ कान में जाएगा, थोड़ा तो उत्साह बढ़ेगा कम से कम 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के बाद दूसरा संग करो, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा हमारा उत्साह। इसलिए बोलते बैटरी चार्जिंग, सही है बैटरी चार्जिंग, ज्यादा आप बैटरी को यूज करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उसको फिर से चार्जिंग, मतलब ऐसा प्लग पॉइंट जहां हाई करंट है, ये करंट जो है हाई लेवल से लो लेवल बहता है, तो जहां थोड़ा उत्साह ज्यादा है, जहां थोड़ा श्रद्धा ज्यादा है, वहां पास में आएंगे थोड़ा तो बह जाएगा कम से कम। तो इस तरह से जब ऐसे लोगों का संग करते हैं, जो मरा हुआ व्यक्ति उसके साथ संग करेंगे तो हम भी मर जाएंगे। मरा हुआ मतलब क्या, जिसकी श्रद्धा मरी हुई है, जिसका उत्साह मरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो हमको लगेगा इतना उछल कूद क्यों करना है, वो तो उछल ही नहीं रहा है, तो मैं भी थोड़ा नीचे बैठ जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे जो बुद्धिमता से कृष्ण भावना में अपने शक्ति को प्रयास में लगा रहा है भक्ति में, तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। दूसरा आप बोलेंगे ऐसा संग बार बार नहीं मिलता, 24 घंटे उसको पकड़ के तो नहीं रह सकते, क्या करेंगे? दूसरा है आचार्य कहते हैं श्रीमद् भागवत का श्रवण, क्योंकि भागवत में ऐसे दो प्रकार के भागवत है, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत। पुस्तक भागवत में सिर्फ व्यक्ति भागवतों का वर्णन है और उनका जीवन जो है श्रद्धा से भरा हुआ है, शुद्ध श्रद्धा तो दूर की बात, प्रेम से भरी हुई है। तो उनके बारे में अगर ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो स्पर्श हो जाएगा हमारे हृदय में। दो प्रकार के महाजन भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, एक पुराने महाजन और एक नए महाजन। पुराने महाजन मतलब चैतन्य महाप्रभु से पहले हुए, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि, और नए महाजन मतलब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और उनके बाद में आए हुए। खास करके जो नए महाजन हैं, उन लोगों के जीवन का अध्ययन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम उसका उत्साह ले सकते हैं, क्योंकि एकदम नए अभी अभी आके गए वो, जिसको हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं हमारे जीवन में। जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर को जब 22 मार्केट में मारा गया, कोई 2 या 3 मार्केट में मारने के बाद जीवित नहीं था, मर जाता था, तो उनको कैसा जीवित रहे हो, यहां तक कि उस व्यक्ति को बोले उन्होंने जिन्होंने सजा दिया, उनको कहे खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण तबु हमें बदन न छाड़े हरिनाम। ज्यादा ज्यादा तुम क्या करोगे, शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दोगे, बोले हर एक टुकड़े से हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा, तुम मेरे को रोक नहीं सकते, तबु हमें बदन न छाड़े हरिनाम। तो ऐसे लोगों का श्रवण करेंगे तो थोड़ा बहुत स्पर्श हो जाएगा हमारे जीवन में। और तीसरा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे गुरुजी के प्रभुपाद जी के गुरु जी वो कहते थे अगर तुम्हें उत्साह महसूस नहीं हो रहा है तो एक्टिंग करो बस, शायद अभी मेरे को सरदर्द हो रहा है, शायद मेरे को भूख लग रहा है, पर कम से कम बोलते वक्त हमें करना चाहिए। अच्छा ठीक है, इतना बोल रहा था हमें करेंगे चलो। और इतना उत्साह पूर्वक बोलने के बाद कम से कम हमको लगेगा इतना उत्साह पूर्वक तो बोल दिया, कम से कम मैं तो करूं कम से कम कल सुबह। तो जब प्रचार करते हैं तो प्रचार आप करो या ना करो, आई मीन आपको मतलब उस व्यक्ति को फायदा हो या ना हो, प्रचार करने के बाद हम तो कम से कम लगता है मैं इतने लोगों को बोल रहा हूं, मैं तो खुद करूं कम से कम। तो इफ वी एक्ट एंथुसियास्टिक तो शायद होता है। मैंने देखा है कॉलेज में पार्टी होता है, कॉलेज में पार्टी में एक दो लोगों को उत्साह नहीं रहता, वो शुरू शुरू में किसी को उत्साह नहीं रहता है, तो इसमें से एक आता है म्यूजिक चालू करता है और वो कूदने लगता है, उसको देख के दूसरा बगल वाला आता है, फिर तीसरा आता है, फिर दूसरा रिंग खोल के आता है, अब बाद में सब नाचने लगते हैं। तो इस तरह से कम एक थोड़ा शुरू करेगा शायद दूसरे को लगेगा इस तरह से। तो ये जरूरी है उत्साह, और इस तरह से जब उत्साह रहेगी बनी रहेगी, जिस दिन उत्साह खत्म हो गया उस दिन समझना हमारा भक्ति नष्ट हो गया। एक ही चीज है जो अनर्थ को नष्ट करके निष्ठा के स्तर पर और निष्ठा से रुचि, रुचि से भाव, भाव से प्रेम तक ले जा सके। इसलिए ये उत्साह होना जरूरी है, और ये उत्साह बनाए रखेंगे बुद्धिमत्ता पूर्वक। उत्साह मतलब सिर्फ फतक फतक के कूदना नहीं, बुद्धिमत्ता से हमारा हर एक क्षण अच्छी तरह से भगवान की भावना में प्रगति होते रहे लॉन्ग टर्म। चार दिन जैसा वो खरगोश और कछुआ का कहानी आपने सुना है ना, खरगोश के कछुआ, खरगोश पहले उत्साह था, बीच में जाके सो गया, ओवर कॉन्फिडेंस, उत्साह वही हो गया वो, पर जो कछुआ था खुदक नहीं रहा था, पर एकदम उत्साह था, धैर्यता से साथ सीधा गया, जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, और पहुंच गया। तो एक खरगोश जैसा उत्साह है और दूसरा कछुए जैसा। बुद्धिमता मतलब कछुए जैसा चलते रहना, बस पीछे मुड़ के देखना नहीं, और जब तक पहुंचे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, यही शास्त्र बतलाता है। प्राप्त उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त हो राम निबोध, तब तक रुको मत, तब तक ना पहुंचो, ये बहुत जरूरी है। तो कल हम लोग इसके बाद का एक चर्चा करेंगे कि ये उत्साह होने के लिए क्या होना चाहिए, निश्चय धैर्य। कल संक्षिप्त रूप में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्साह तभी होगा जब हमको निश्चय है कि हम सही दिशा पे, आपको गारंटी नहीं है कि मैं सही दिशा में हूं, मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं, तो आपको उत्साह नहीं आएगा। तो वो निश्चय कैसा आना चाहिए और कैसा प्राप्त किया जाए वो कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद्गीता की जय। गौर प्रेमानंदे।